भगवान के शुभ आगमन से धरा धन धान्य संपन्न हो गई, प्रकृति आनंद से झूम उठी, दिशाएं निर्मल हो गई, अंबर से रिमझिम बूंदे गिरने लगी, बंद जन मंगल गान करने लगे तथा देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। सौ धर्मेंद्र की आज्ञा से शचि ने प्रसूति गृह में जाकर तीर्थंकर प्रभु और माता त्रिशला को प्रणाम किया। बाल भगवान के दर्शन मात्र से ही उनके भक्ति प्लावित नयन हर्षाश्रु पूरित हो गए। भगवान के स्पर्श सुख से उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। इंद्र बाल भगवान को ऐरावत पर आसीन कर सुमेरु पर्वत ले गए। वहां क्षीर सागर की पावन जल धाराएं भगवान को अभिषिक्त कर स्वयं को धन्य अनुभव करने लगी। अभिषेकोपरांत मांगलिक वस्त्राभूषणों से अलंकृत बाल भगवान माता त्रिशला के पास लाए गए। एक दिन बाल भगवान अपने रत्न जड़ित पालने में झूल रहे थे। उस समय उनकी कांति अत्यंत हृदयावर्चक थी। ऐसे रमणीय वातावरण में संयोग से दो मुनियों का आगमन हुआ। वो किसी जैन सिद्धांत के प्रति संशयग्रस्त थे, पर ये क्या, ज्यों ही उन्होंने बाल भगवान के दर्शन किए उनका संशय जाता रहा। पहले वो प्रश्नचिन्त थे, अब प्रसन्नचित्त हो गए। उनका हृदय भगवान के भक्ति सागर में अवगाहन करने लगा। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ भगवान को नमन किया। कुमार वर्धमान बचपन से ही बड़े गंभीर, शांत, उदात्त और अंतर्मुखी थे। उनको आह्लादित करने के लिए देव भी बाल रूप में पधारते रहते थे। एक बार भगवान अपने समवयस्क साथियों के साथ आमली क्रीड़ा कर रहे थे। इस क्रीड़ा में एक वृक्ष को केंद्र मानकर दौड़ते हैं, जो सर्वप्रथम उस पर चढ़कर उतर आता है वही विजयी होता है, और पराजित बालकों के कंधे पर चढ़कर वो उस स्थान तक जाता है जहां से दौड़ प्रारंभ हुई थी। जब भगवान क्रीड़ा रथ थे, उसी समय संगमधर नामक एक देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक विशाल सर्प का रूप धारण कर उस वृक्ष को लपेट लिया। इस आसन्न विपत्ति से वर्धमान के समस्त साथी पलायन करने लगे, पर भव भय तारणहार भगवान पर इसका लेश मात्र भी प्रभाव न हुआ। वो उस भयंकर सर्प पर आरूढ़ होकर ऐसे क्रीड़ा करने लगे मानो माता त्रिशला के पलंग पर हो। अंततो गत्वा संगम देव को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने भगवान को महावीर संज्ञा से विभूषित किया था।
अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष अर्जुनेश्वर।
जब भगवान 8 वर्ष के हुए तो उनके माता पिता ने शुभ मुहूर्त देखकर उन्हें अध्ययन हेतु कलाचार्य के पास भेजा। जब सौ धर्मेंद्र को अवधि ज्ञान द्वारा इस घटना का ज्ञान हुआ तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वो तुरंत एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में कलाचार्य के गुरुकुल पहुंचे और भगवान को मन ही मन नमन करते हुए उनसे व्याकरण से संबंधित कठिन से कठिन प्रश्न पूछने लगे, जिनका प्रभु ने बहुत ही समीचीन निवारण किया। अंततः आचार्य ने कहा कि ये बालक तो समस्त विषयों में पारंगत है, समस्त शास्त्रों में निष्णात है, इसे मैं क्या शिक्षा दे सकता हूं। उसी समय ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने भगवान का सम्यक परिचय देते हुए कहा कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये गुरुराम गुरु है, ये इस संसार में पढ़ने नहीं अपितु पढ़ाने आया है। अंततः आचार्य और इंद्र दोनों ने ही बालक प्रभु के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट की। बाल भगवान क्रमशः शैशवावस्था और किशोरावस्था को पार कर जब युवावस्था में प्रविष्ट हुए तो उनकी कीर्ति पताका चतुर्दिक फैलने लगी। वो एक राजकुमार थे, भोग विलास की समस्त सामग्री उन्हें सुलभ थी, उनकी उम्र भी विवाह योग्य हो गई थी, पर उनकी वृत्ति आत्मकेंद्रित थी, कंचन और कामिनी की भावना का उनमें नितांत अभाव था। वो समस्त जागतिक आकर्षणों से परे रहकर सर्वदा आत्मदर्शन में ही जागृत रहना चाहते थे, पर अपनी माता के स्नेहवश कुमार वर्धमान ने कलिंग नरेश जित शत्रु की अलिंद सुंदरी कन्या यशोदा के साथ परिणय सूत्र में बंधना स्वीकार कर लिया। उनको एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी जिसका नाम प्रियदर्शना था। ध्यातव्य है कि दिगंबर परंपरा के अनुसार कुमार वर्धमान आजीवन ब्रह्मचारी रहे। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों का सम्यक रीति से पालन करते हुए क्रमशः मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त हुए थे। ओम नमो महावीर स्वामिने नमः। मोक्ष मार्ग
वीरा सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधा संहिता वीरेणाभिहता स्वकर्मनिचयो वीराय तस्मै नमः। वीरातीर्थमिदं प्रवत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीप्रतिकीर्तिकान्तिनिचया श्रीवीरभद्रं दिश।
कालचक्र चतुर्थ आर्य के अंतिम चरण में गतिमान था। उस समय संसार पूर्ण वैभव संपन्न था। सांसारिक आकर्षणों में लीन रहने के कारण जीवात्मा भोग में ही चरम सुख प्राप्ति चाहती थी। मानवीय मूल्यों के प्रति नैराश्य भाव बढ़ता जा रहा था। प्राणी अहिंसा के उत्कृष्ट भाव से विरत होकर क्रमशः हिंसा की ओर उन्मुख होने लगा। वो भूल गया था कि इन सांसारिक सुखों के पीछे दुख का अनंत सागर हिलोरे ले रहा है। अज्ञानता की अमानिशा में वो मानव जीवन के उच्चादर्शों के प्रति उदासीन होने लगा था। वो भूल गया था कि इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, वो किसे छोड़कर आया है, और ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक ना एक दिन उसे इस असार संसार से सदा सदा के लिए पृथक कर देगी। वास्तव में ये सार्वभौम प्रश्न अनादिकाल से ही मानव मन सदा व्यथित करते रहे हैं, जिनके समाधान हेतु वो आध्यात्मिक चिंतन करने को बाध्य होता रहा है। सच्चाई तो ये है कि हमारे समस्त ज्ञान विज्ञान इन्हीं प्रश्नों के समाधान में किए गए प्रयास हैं। ध्यातव्य है कि जगतारणहार 24वीं तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी इन्हीं सार्वभौम प्रश्नों के हल लेकर अंतिम तीर्थंकर के रूप में गुरुनाम गुरु बनकर अज्ञान अंधकार में भ्रमित मानव चक्षु को ज्ञानांजन शलाका से उन्मीलित करने पधारे थे। मानव जीवन के अमावस्या की वो भयानक रात प्रतिपदा के इस तेजस्वी सूर्य के दर्शन मात्र से छिन्न भिन्न हो गई। स्मर्तव्य है कि जब भी इस धरा पर अज्ञानता अपनी चरम सीमा पर होती है तो ज्ञानालोक की धारक दिव्य आत्माएं धर्म पिपासुओं की करुण पुकार से द्रवीभूत होकर उनका सम्यक मार्गदर्शन करने के लिए अवश्य पधारते हैं। बस साधक के अंतःकरण में उन्हें बुलाने की प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लोक कल्याणकारी जगतारणहार भगवान महावीर स्वामी वो उदीयमान सूर्य हैं जिनकी ज्ञान प्रभा ने अनेक आत्माओं को जन्म मृत्यु परंपरा से सदा सदा के लिए मुक्त कर दिया है। तो आइए इस कड़ी में हम भगवान महावीर स्वामी के जीवन के दूसरे पक्ष अर्थात मोक्ष मार्ग की ओर चलते हैं। भगवान महावीर स्वामी बाल्यावस्था से ही अंतर्मुखी थे। उनकी चिंतन धारा ने उन्हें सांसारिक आकर्षणों के प्रति उदासीन बना दिया था। अपने राजप्रासाद के एकांत कक्ष में ध्यानस्थ होकर वो जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तल्लीन हो जाया करते थे। उनके प्रति श्रद्धा रखने के कारण अनेक लोगों ने उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा करनी प्रारंभ कर दी थी। ये जीवन तो स्वामी की मूर्तियां थी। जब भगवान ने जीवन के 30 वर्ष पूर्ण किए तो एक दिन अकस्मात अवधि ज्ञान से उन्हें अपने पूर्ण भाव का स्मरण हो आया। परिणामतः उनके मन में निर्वेद की निर्मल धारा प्रवाहित होने लगी। लोकांतिक देवों ने भगवान की स्तुति करते हुए उन्हें धर्म तीर्थ प्रवर्तन काल की समीपता का बोध कराया। इंद्र ने भगवान को सिंहासन पर आसीन कर मांगलिक वस्त्रों से अलंकृत करने के उपरांत पावन शिविका में आरूढ़ किया। तत्पश्चात अपने मृदु वचनों से स्वबंधुजनों से विदा लेकर भगवान ज्ञातखंड उपवन पधारे। वहां भगवान ने अपने समस्त वस्त्राभूषण उतार दिए और अशोक वृक्ष के नीचे नमो सत्थाणम कहकर केश लुच्चन करने लगे। सौ धर्मेंद्र ने भगवान के वस्त्राभूषणों और केश राशि को एक मणिमय पिटारे में रखकर क्षीर सागर के पावन जल में प्रवाहित कर दिया। ध्यातव्य है कि भगवान महावीर स्वामी ने एकाकी ही दीक्षा ग्रहण कर अपने बाध्य और आंतरिक परिग्रह का परित्याग किया था। इस प्रकार मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी को मंगल प्रभात में भगवान मन पर्याय ज्ञान के धारक हो गए।
अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रया प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम्।
इसके पश्चात भगवान ने अस्तिक ग्राम की ओर प्रस्थान किया। वहां के राजा ने मन वचन व शरीर की शुद्धता के साथ भगवान को परमान्न प्रदान कर स्वयं को धन्य किया। देवों ने पंचाश्चर्य प्रकट कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। तत्पश्चात भगवान महावीर स्वामी कौशाम्बी नगरी में पधार कर नित्य नियमानुसार भिक्षा हेतु थनावा सेठ के यहाँ पधारे। संयोग से उसी समय चंपापति राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनवाला का पापोदयवश बिकने का प्रसंग उपस्थित हुआ। धनावा ने चंदनवाला का क्रय कर लिया अर्थात उसे खरीद लिया, पर धनावह अनुपस्थिति में उसकी पत्नी मूला ने ईर्ष्यावश चंदन बाला का सिर मुड़वाकर तथा पैरों में बेड़ियां पहनाकर गृह तल में डाल दिया और चंदन बाला को रूखा सूखा भोजन देने लगी। जब महावीर स्वामी उधर से निकल रहे थे तो चंदना बहुत पुलकित थी। भगवान की कृपा से उसका रूप रंग दशा और भोज्य पदार्थ सभी परिवर्तित हो गए। चंदना द्वारा भगवान को दिए गए आहार की चर्चा सर्वत्र होने लगी।
प्रभु नाम निषधि खरा पावती खाए रोग शोक व्यापी नहीं संकट सभी दूर।
वत्स देश की पट्ट महिषी मृगावती उसके दर्शन को आई। सेठ धनावा भी आकर अति हर्षित हुए। मृगावती ने जब ये देखा कि ये तो उनकी छोटी बहन चंदना है तो हर्ष और विषाद से उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। श्रेष्ठी की अनुमति प्राप्त कर वो चंदना को अपने साथ ले गई, पर चंदना का मन अब पूरी तरह विरक्त हो चुका था। कालांतर में वो भगवान की आर्य का और गढ़िनी बन गई। भगवान महावीर स्वामी को आदिकाल से अपनी आत्मा पर जमे हुए कर्मों के मलिन संस्कारों को मिटाने में 12 वर्ष लग गए थे। इसी क्रम में एक दिन वो विहार करते हुए जृम्भिक ग्राम के बाहर ऋजकूला नदी के पावन तट पर पहुंचे और वहीं शाल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। अंततः आत्मा के परम पुरुषार्थ ने कर्मों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। परिणामतः उन्होंने ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय नामक घातिया कर्मों के क्षयोपरांत अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कर ली। वैशाख शुक्ल दशमी का 4वां प्रहर धन्य है, जिसमें भगवान सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बने। उनका शरीर महिमा का निधान बन गया। इंद्रादि देवों ने बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक मनाया। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने संवसरण की रचना की।
दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सुपानम दर्शनम मोक्ष साधनम।
संवसरण के मध्य में भगवान महावीर स्वामी मौन विराजमान थे। उस समय देव, मानव और त्रियंच सभी प्राणी चातक की तरह उनके ज्ञानामृत रस का पान करने के लिए आतुर थे। पर इंद्रभूति गौतम के अतिरिक्त उस मौन की भाषा को समझने वाला भला कौन था? मौन भी अभिव्यंजना है, पर उसकी सच्ची परख एक साधक ही कर सकता है। वहां के रम्य वातावरण से प्रभावित होकर इंद्रभूति ने दीक्षा ग्रहण कर ली। वो भगवान के 11 गणधरों में से एक थे। अंततः श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि मुखरित हुई।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमम प्रभु मंगलम स्तूल भद्राजा जैन धर्मोस्तु मंगलम।
यद्यपि भगवान का धर्मोपदेश अर्धमागधी भाषा में ही होता था, पर वो प्रत्येक श्रोता के लिए प्राय था। दिव्य ध्वनि के समय भगवान के मुख पर कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं होता था। उनके व्यक्तित्व और देशना का प्रभाव तत्कालीन निर्धनों से लेकर राजाओं पर व्याप्त था।
जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण धन्य छे जे जीव जिन वर ने तवे ते जीव ने पण धन्य छे।
भगवान महावीर स्वामी ने समस्त धर्म स्थानों में सबसे पहला स्थान अहिंसा को दिया। अहिंसा ही वो मूल तत्व है जिसमें प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना सन्निहित है। समस्त जीवों पर संयम भाव बनाए रखना ही अहिंसा है। जैन धर्म की मान्यता है कि चेतना लक्षणों जीव अर्थात चेतनशीलता ही जीव मात्र का लक्षण है। सब में एक ही आत्मा का वास है, इसीलिए ज्ञानी जन किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करते। सच्चाई तो यह है कि अहिंसा का सिद्धांत ही सर्वोपरि सिद्धांत है। इस अहिंसा व्रत का पालन मन, वचन और कर्म तीनों रूपों में समान भाव से होना चाहिए। इसके विपरीत आचरण निश्चित रूप से निंदनीय है। जो मनुष्य प्राणियों की हिंसा स्वयं करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है, या हिंसा करने वालों का पक्षधर होता है वो निश्चित रूप से अपने सांसारिक वैर भाव को प्रोत्साहित करता है और कर्म बंधनों की श्रृंखला में जकड़ता चला जाता है और इस प्रकार वो मानव जीवन के गुरुतर उत्तरदायित्वों से विरत होने लगता है। अतः हमें पंच महाव्रतों अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का सम्यक रूप से पालन करते हुए धर्म का आचरण करना चाहिए। ध्यातव्य है कि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से लेकर तीर्थंकरों की परंपरा द्वारा एक ही धर्म का उपदेश दिया गया है। किसी भी तीर्थंकर ने किसी नवीन धर्म की उद्भावना नहीं की है। भगवान महावीर स्वामी के धर्म विहार और प्रभाव के समस्त प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। उनकी वाणी समस्त प्राणियों पर अमृत वर्षा करती हुई सर्वत्र गूंजती रहती है।
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष दिनेश्वर।
भगवान महावीर स्वामी सर्वथा निर्ग्रंथ थे और प्राणी मात्र के कल्याण की बात करते थे। उनके सिद्धांत अनेकांतवाद स्यादवाद और आत्मवाद पर आधारित हैं, जिनमें सभी को समान स्थान प्राप्त है। उनके आत्मसंभावी शाश्वत संदेशों में सभी का हित सन्निहित है। 29 वर्ष 5 मास और 20 दिवस पर्यंत विहारोपरांत भगवान महावीर ने कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के दिन स्वाति नक्षत्र में अपने संपूर्ण अघातिया कर्मों के क्षयोपरांत पावाहुरी में निर्वाण की प्राप्ति की। भगवान के निर्माणोपरांत इंद्र ने गोशीर्ष चंदन आदि की चिता सजाई। क्षीर सागर के पावन जल से स्नान कराने के पश्चात दिव्य अंगरागों का आलेपन किया और विमानाकार शायिका में भगवान के मृतक शरीर को रखा गया। उस समय सभी शोकमग्न थे। भगवान महावीर स्वामी के सेवक यक्ष का नाम मातंग और सेविका का नाम सिद्धाई का था। स्मर्तव्य है कि भगवान के निर्माण के पश्चात उनके प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने भगवान द्वारा उपदेशित अहिंसा मार्ग को जन जन तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन।
सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासनम।